पाठ 40 अध्याय 26। मूल रूप से अब हम कानून देने और पवित्र अनुष्ठानों की स्थापना के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए अध्याय 26 एक तरह से पीछे हट जाता है और कहता है, यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए कामों का पालन करोगे तो तुम पर बहुत आशीर्वाद बरसेगा, यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए कामों का पालन नहीं करोगे तो बहुत सजा मिलेगी। ईश्वर का न्याय तब भी था और अब भी है, दो तरफा रास्ता या न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। आइए हम सब मिलकर अध्याय 26 पर हैं, लेव्य व्यवस्था 26 पूरा पर हैं। प्रथम तीन पद इसराइल को परमेश्वर द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की एक छोटी सूची की याद दिलाते हैं। एक, कोई मूर्ति पूजा नहीं। दो, यहोवा इसराइल का प्रभु है। तीन, सप्त का पालन किया जाना चाहिए। और चार, परमेश्वर के निवास स्थान तंबू का उसके नियमों के अनुसार सावधानी पूर्वक रख रखाव किया जाना चाहिए। तोरह में इन चार सिद्धांतों को बार बार बताए जाने के दो कारण हैं। पहला, इसराइलियों की मानसिकता मूर्ति पूजक थी। वे मूर्तियों की पूजा करते थे, वे कई देवताओं की पूजा करते थे, वे सातवें दिन साबत के विश्राम का पालन नहीं करते थे जिसे यहोवा ने दुनिया की शुरुआत से ही स्थापित किया था। और इन अधर्मों के कारण अशुद्धता और सामान्यता की बाधाएं जो परमेश्वर ने मानव जाति और उसके सांसारिक निवास स्थान जंगल के निवास स्थान के बीच स्थापित की थीं, उन्हें बिना किसी समझौते के बनाए रखा जाना था। दूसरा, ये सिद्धांत एक प्रकार के आधारभूत सार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इसराइल के अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते के आधार को स्पष्ट करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पद तीन कहता है कि अगर तुम मेरे नियमों का पालन करते हो, यानी तोरह के सभी नियम और कानून, तो यही वह समय है जब सारी अच्छी चीजें घटित होती हैं। बाद में पद 14 में यह कहा गया है कि अगर तुम मेरे नियमों को तोड़ते हो तो यही वह समय है जब सारी बुरी चीजें घटित होती हैं। यहां एक ऐसी बात है जिसे भूलना आसान है, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमेशा अपने साथ परिणाम लेकर आती है। कोई तटस्थ स्थिति नहीं है, यह परमेश्वर के न्याय की व्यवस्था है और हम इससे बच नहीं सकते। आज्ञाकारिता सकारात्मक परिणाम लाती है और अवज्ञा नकारात्मक परिणाम लाती है। बाइबल आज्ञाकारिता के सकारात्मक परिणामों को आशीर्वाद और अवज्ञा के नकारात्मक परिणामों को श्राप कहती है। व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी होने का आशीर्वाद हमें परमेश्वर के साथ जीवन देता है। व्यवस्था के प्रति अवज्ञाकारी होने का अभिश्राप परमेश्वर से अलगाव लाता है। लेव्य व्यवस्था 26 के आशीर्वाद और श्रापों की यह सूची उस युग और उस क्षेत्र के लिए एक प्रसिद्ध और अच्छी तरह से स्थापित रूप का अनुसरण करती है। लिपिटिस्टर, पुराने बेबीलोनियन साम्राज्य, हित्तियों, हम्मुराबी के कानून और अन्य के कोड में पाए जाने वाले कानून आम तौर पर कानूनों की एक श्रृंखला को स्पष्ट करते हैं और फिर उन लोगों पर आशीर्वाद के साथ समाप्त होते हैं जो आज्ञा मानते हैं और उन लोगों पर श्राप देते हैं जो विद्रोह करते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय में लगातार ये साबित करने का दबाव है कि लेव्य व्यवस्था को बाइबल कालक्रम के अनुसार 1300 ईसा पूर्व के आसपास माउंट सिनाई पर मूसा द्वारा प्राप्त कुछ नहीं है बल्कि 530 ईसा पूर्व के आसपास न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य में अपने निर्वासन से लौटने के बाद यहूदियों के दिमाग से बनाया गया कुछ है। और यह भी साबित करता है कि ये इजरायली एक अलग थलग लोग नहीं थे जो अपने आसपास की दुनिया की उपेक्षा करते थे। वे उन सभी मनुष्यों के साथ बहुत तालमेल रखते थे जिनके साथ वे दुनिया को साझा करते थे, खासकर वे जो मध्य पूर्व में उनके आसपास थे। इसलिए यहोवा के सामने इसराइलियों को अन्य सभी लोगों से अलग और विशिष्ट बनाने का एक बड़ा कार्य था। एक और बात हमें चाहता हूं कि आप पहचानें कि इस अध्याय का मुख्य जोर इस बात पर है कि यह एक राष्ट्र के रूप में इसराइल को संबोधित कर रहा है। यह इसराइल की पूरी मंडली से बात कर रहा है, न कि सिर्फ नेताओं या व्यक्तियों से, जबकि कुछ मामलों में स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक आशीर्वाद और श्राप को व्यक्तिगत रूप से लागू किया जा सकता है। यह इस बारे में अधिक है कि यहोवा एक समूह, एक समुदाय के रूप में इज़राइल पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। जैसा कि कहा गया है, एक राष्ट्र क्या है लेकिन व्यक्तियों का एक बड़ा समूह। इसलिए यदि किसी राष्ट्र के हजार नागरिकों में से एक अवज्ञाकारी है तो राष्ट्र पर समग्र प्रभाव आमतौर पर छोटा होता है। यदि 1,000 में से 100 लोग अवज्ञाकारी हैं तो राष्ट्र पर समग्र प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। यदि 1,000 में से 500 लोग अवज्ञाकारी हैं तो राष्ट्र की भलाई पर प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। किसी बिंदु पर, और मुझे नहीं पता कि वह बिंदु कहाँ है, एक राष्ट्र या समूह के भीतर कई व्यक्तियों के अवज्ञाकारी होने का संचयी प्रभाव पूरे राष्ट्र या समूह को खतरे में डाल देता है। यही कारण है कि पिछले अध्यायों में हमने जो दंड देखे थे, जो लैव व्यवस्था के नियमों के साथ साथ थे, वे इतने कठोर लग रहे थे। परमेश्वर उन लोगों को बाहर निकालना चाहता है जो आदतन अवज्ञाकारी हैं, क्योंकि यह संक्रामक हो सकता है और कुछ लोगों के संक्रमित होने का खतरा उसे अपने न्याय को पूरा करने के लिए पूरे राष्ट्र को नष्ट करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब राष्ट्रीय न्याय की बात आती है तो यह तथ्य कि आप धर्मी हैं, परमेश्वर को आपके पूरे राष्ट्र के प्रति गंभीर प्रतिक्रिया करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह है कि सबसे धर्मी और आज्ञाकारी व्यक्ति भी उस न्याय के साथ साथ एक तरह की संपार्श्विक क्षति में फंस सकता है। हम बाइबल में हर मोड़ पर यही बात घटित होते देखते हैं। यहोवा ने इसराइल को जो पहला आशीर्वाद देने का वादा किया है वह यह है कि जब बारिश होनी चाहिए तब होगी। यह एक कृषि प्रधान समाज है। यह केवल इतना ही नहीं है कि उन्हें बारिश मिलेगी या नहीं, बल्कि यह भी कि कितनी और कब होगी। यह सब फसल की पैदावार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हमने न्यू ऑर्लियंस में कैटरीना की आपदा में देखा, जीवन की मूल बातें भोजन और पानी से शुरू होती हैं। इन दो चीजों के बिना बाकी सब निरर्थक है। और बारिश के बारे में यह आशीर्वाद पद 5 में यह कहकर जारी रहता है कि फसलें इतनी मजबूत होंगी कि इब्रानियों को फिर से रोपण शुरू करने से पहले कटाई खत्म करने का समय ही नहीं मिलेगा। आशीर्वाद का अगला वादा है देश में सुरक्षा। उसके बाद वादा है कि इसराइल अपने पाडीडीडी होसियों के साथ शांति बनाए रखेगा। इससे पहले कि हम तोरह के आदेशों के पालन से होने वाले अगले कई आशीर्वादों को देखें, मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर ध्यान दें। जब बात उन अच्छी चीजों की आती है जो तोरह के आदेशों के पालन से होती हैं, आज्ञाकारिता परमेश्वर कहता है मैं करूंगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सक्रिय रूप से आशीर्वाद प्रवाहित कर रहा है। यह निष्क्रिय नहीं है, यह अनुमति नहीं है, यह यहोवा है जो सुरक्षा होने का कारण बनता है, शांति होने का कारण बनता है, बारिश को सही समय और सही मात्रा में बरसने का कारण बनता है। और इसी तरह जब हम अवज्ञा के परिणाम स्वरूप होने वाले श्रापों पर आते हैं तो हम प्रत्येक बुरी बात, प्रत्येक सजा को भी देखेंगे जिसके पहले मैं करूंगा कहा जाता है। निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि सक्रिय रूप से यहोवा उन लोगों पर न्याय लाएगा जो उसके तोरह का उल्लंघन करते हैं। प्रभु विपत्तियां घटित करवाएगा। मुझे आपको यह बताना है कि जबकि हम में से अधिकांश यीशु के अनुयायी मेरे द्वारा कही गई बातों से पूर्ण सहमति में अपना सिर हिलाते हुए आमीन कहेंगे, हम में से अधिकांश लोगों में यह सवाल करने की प्रवृत्ति भी होगी कि क्या हमारे साथ या दूसरों के साथ या हमारे राष्ट्र के साथ जो बुरी चीजें होती हैं उनके लिए ईश्वर सक्रिय रूप से, व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। कहीं ना कहीं चर्च के अधिकांश लोगों ने यह तय कर लिया है कि हमारा उद्धार हमारे पाप पूर्ण व्यवहारों के दैवीय निर्देशित परिणामों के विरुद्ध एक प्रकार का टीकाकरण है, या कि ईश्वर एक दयालु बूढ़ा दादा है जो अपने लोगों की अविवेकपूर्ण हरकतों पर आंख मारता है और सिर हिलाता है। खैर, यह वह नहीं है जो पवित्र शास्त्र कहता है और यह वह चित्र नहीं है जिसे पूरी बाइबल चित्रित करती है। ईश्वर के तोरह के पालन से मिलने वाली आशीषों की सूची पर वापस आते हैं। जंगली जानवर पीरा नहीं देंगे और सेनाएं दुश्मन के साथ युद्ध करते समय इसराइल की भूमि को पार नहीं करेंगी। इसके बाद अगर किसी कारण से युद्ध छिड़ जाता है तो इसराइल बहुत मजबूत होगा और आसानी से जीत जाएगा। वैसे जंगली जानवरों की यह बात सही है। इस समय कनान की भूमि भालू और शेरों से भरी हुई थी। ये मांसाहारी जानवर झुंड और लोगों दोनों के लिए एक बड़ी समस्या थे। पद 9 में इसराइल पर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण लोग उपजाऊ होंगे और उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। स्वाभाविक रूप से यह यहोवा द्वारा अब्राहम से की गई वाचा का हिस्सा है कि वह एक महान राष्ट्र का पिता बनेगा और उसके वंशज एक बड़ी भीड़ बनेंगे। पद 11 में यहोवा कहता है कि वह इसराइल के मध्य निवास करेगा। यह इब्रानियों के लिए कितना बड़ा सम्मान है और यह कि इसराइल उसके लोग होंगे और वह इसराइल का परमेश्वर होगा। यह एक भेर चरवाहे का रिश्ता है जिसका वर्णन किया जा रहा है। भेरें अपने चरवाहे की आज्ञा मानेंगी और बदले में चरवाहा भेरों की सुरक्षा और भलाई की गारंटी देगा। तो आइए समीक्षा करें, परमेश्वर अपने लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में क्या देखता है। प्रभु की अर्थव्यवस्था में आशीर्वाद का क्या अर्थ है, क्योंकि यही वह है जिससे हमें सहमत होना और आशा करना सीखना चाहिए। प्रचुर मात्रा में भोजन, शांति और सुरक्षा, दुश्मनों और जानवरों से सुरक्षा जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, कई बच्चे होना और उनके बीच परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति जो उसकी वाचाओं की निरंतरता की गारंटी देती है। मैं आपको इस दिव्य आशीर्वाद के लिए एक और शब्द देता हूँ, समृद्धि। हमने अभी जो पढ़ा वह समृद्धि की परमेश्वर की परिभाषा है। मुझे डर है कि समृद्धि की हमारी परिभाषा कुछ अलग है ना? मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप शास्त्रों में कहीं भी समृद्धि की परिभाषा खोजें जिसका अर्थ है विशाल बैंक खाते, बड़े घर, लग्जरी कारों का बेरा, सार्वजनिक या निजी नौकरी क्षेत्र में एक शक्तिशाली पद और नवीनतम डिजाइनर कपड़ों से भरी एक बड़ी अलमारी, यूरोप में छुट्टियां और जल्दी सेवानिवृत्ति। मैं निश्चित रूप से इन चीजों की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह समृद्धि का सुसमाचार जो सभी गुस्से में है, विशेष रूप से बहुत से टीवी प्रचारकों के बीच एक झूठा सुसमाचार है, क्योंकि सुसमाचार कहता है कि ईश्वर चाहता है कि आप भौतिक रूप से धनवान हो। वह चाहता है कि आपके पास मर्सिडीज हो और आप सोने के आभूषणों से सजे हों। वास्तव में ईश्वर के बच्चे के रूप में आप इस सारी दौलत के हकदार हैं और इसका एकमात्र कारण यह है कि आप ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप समृद्धि के सुसमाचार में विश्वास नहीं करते। क्या ईश्वर हमारे पास ये सभी अच्छी चीजें होने के खिलाफ है? आम तौर पर नहीं। क्या यह ईश्वर का उद्देश्य है कि उसके सभी लोग ये चीजें हासिल करें? आम तौर पर भी नहीं। लेकिन यह उसका उद्देश्य है कि अगर उसके लोग उसके आज्ञाकारी हैं तो उनकी सभी जरूरतें उसकी इच्छा के अनुसार पूरी होंगी। जो चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वही बाइबल की समृद्धि को परिभाषित करती है। पद 14 और 15 से शुरू करते हुए हम पाते हैं कि अगर इसराइल परमेश्वर के तोरह आदेशों का पालन नहीं करता है तो क्या होता है? यह उसकी वाचा को तोड़ने के बराबर है और इसका परिणाम कानून तोड़ने वालों पर श्रापों की एक श्रृंखला है। और यहां हम फिर से मैं चाहता हूं के साथ चलते हैं। यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा और मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा। और ये बहुत अप्रिय मैं चाहता हूं है। ये इस तरह से शुरू होता है, मैं तुम्हारे ऊपर दुख लाऊंगा। और निश्चित रूप से पहला दुख खराब स्वास्थ्य है। हम में से जिन्हें लंबे समय तक जीने का सौभाग्य मिला है, वे अंततः यह समझ गए हैं कि अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है तो बाकी सब बहुत महत्वहीन है। अगला यह है कि इसराइल के परिश्रम का फल उन्हें नहीं बल्कि उनके शत्रुओं को मिलेगा। इसराइल अपने शत्रुओं से पराजित होगा। पद 17 में और भी कहा गया है, निरंतर भय और चिंता इसराइल के भाग्य में होगी। यही वह है जो भागने का मतलब है, भले ही कोई उसका पीछा ना कर रहा हो। ध्यान दें कि पद 18 कहता है, और यदि इन सब के बाद भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अवज्ञाकारी लोगों के लिए परमेश्वर के श्रापों के बारे में यहां बताया गया है, वह हमेशा तुरंत नष्ट नहीं करता है। आमतौर पर वह अनुशासन के माध्यम से चेतावनी देना शुरू करता है। शुरू में अनुशासनात्मक कार्रवाई कम गंभीर होती है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो उन्हें बढ़ाया जा सकता है। ऐसी चीजें होने लगती हैं जिनसे व्यक्ति आम तौर पर उबर सकता है। वह आपको दुखी बनाता है, मरा नहीं, वह आपके स्वास्थ्य को खराब कर देता है। वह ऐसा करता है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जितना तेज आप भागते हैं उतना ही पीछे रह जाते हैं। आपके दुश्मन आप पर हावी हो जाते हैं और आपको लगातार परेशान करते रहते हैं। यहां तक कि जब वास्तविक खतरे मौजूद नहीं होते हैं तब भी ऐसा लगता है कि वे मौजूद हैं, और इसलिए आप उन कारणों के लिए डर, अवसाद और चिंता में रहते हैं जिन्हें आप समझ भी नहीं पाते हैं। यहोवा का अनुशासन प्रेम के बारे में है। परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासित करता है क्योंकि वह अपने लोगों से प्रेम करता है। उसकी आशा है कि अनुशासन के कारण उसके लोग अपने अवज्ञाकारी कार्यों को त्याग देंगे। वह अपनी पवित्र पीठ को उन पर नहीं फेरना चाहता और वह निश्चित रूप से उन्हें नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वह ऐसा करेगा और उसने अतीत में ऐसा किया भी है। और हम जानते हैं कि यह सिद्धांत केवल इज़राइल के भौतिक राष्ट्र के लिए ही नहीं है, इसके अतिरिक्त कम से कम यह सभी विश्वासियों पर लागू होता है, क्योंकि सभी विश्वासी इज़राइल की वाचाओं के अधीन हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। और चूंकि पृथ्वी पर लगभग हर राष्ट्र में विश्वासी हैं, इसलिए पृथ्वी पर हर राष्ट्र, ऐसा मुझे लगता है। लैव्य व्यवस्था 26 के अनुशासन के इस सिद्धांत के अधीन है। तो यहां निहितार्थ पर ध्यान दें। यदि इज़राइल को एहसास होता है कि वे परमेश्वर के अनुशासन के अधीन पीड़ित हैं और वे पश्चाताप करते हैं और अपने तरीके बदलते हैं, आज्ञाकारिता की ओर लौटते हैं, तो अनुशासन समाप्त हो जाता है। इससे भी बेहतर आशीर्वाद नए सिरे से शुरू होते हैं। यही कारण है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हमारे देश में बुरी चीजें होने लगती हैं, जब आपदाएं आती हैं, जब युद्ध और उथल पुथल और आपदाओं की एक श्रृंखला होती है, तो यह यहोवा की ओर से अनुशासन है, दुर्भाग्य नहीं। जब हम अंदर की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है जिससे उनका क्रोध भड़क उठा है, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम ऊपर देखते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं कि उसने हमें क्यों छोड़ दिया, तो हम कहते हैं कि दोष उसका है। जब हम इसे दिल से लेते हैं कि यह उसका हम पर अनुशासन है, तो हमारे पास इसके बारे में कुछ करने का अवसर होता है। जब हम ऐसा नहीं करते, जब हम इसे नकारते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमारा काम मजबूत घर बनाकर या घर खरीदकर खुद को इन आपदाओं से बचाना है, या बेहतर बीमा, या अपने शरीर की बेहतर देखभाल करना, या अपनी सरकारी आपदा सेवाओं को पुनर्गठित करना, या हम बस पूरी बात को हमारी बारी या यही जीवन है कहकर टाल देते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह ईश्वर का क्रोध या अनुशासन नहीं है। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। जब तक मसीहा इसे सही करने के लिए नहीं आते, तब तक संसार की यही स्थिति रहेगी। मैं कभी नहीं चाहता कि हम यह भूल जाएं कि तूफान कैटरीना का जन्म ठीक उसी सप्ताहांत हुआ था जब इसराइल ने अमेरिका की मांग के आगे घुटने टेक दिए थे कि इसराइल की भूमि को विभाजित किया जाए और यहूदी नागरिकों को गाजा में उनके घरों से जबरन निकाला जाए। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक राष्ट्र के रूप में हमारे ऊपर यहोवा का अनुशासन है। मैं उम्मीद से परे आशा करता हूं कि इस देश भर में हमारे चर्चा में पादरी, पुजारी, मंत्री और शिक्षक ये समझेंगे कि यह ईश्वरीय अनुशासन है। इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहें और स्पष्ट करें कि हमारे प्रभु का अपमान किस तरह से किया गया था। न्यू ऑर्लियंस के लोग हमारे देश के किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर या बदतर नहीं है। वे केवल वे लोग थे जिन्होंने इसका खामियाजा उठाया। भले ही इसका हमारे पूरे देश पर बुरा प्रभाव पड़ा हो, मुझे उम्मीद है कि हमारे जैसे लोग यह समझेंगे कि हमें एक न्यायप्रिय ईश्वर ने सही ढंग से याद दिलाया है कि वह वही करेगा जो वह कहता है कि वह करेगा। दुर्भाग्य से मैंने जो कुछ भी पढ़ा, देखा और आम तौर पर सुना है वह बिल्कुल इसके विपरीत है। धार्मिक नेता जल्दी से अपने झुंडों से कह रहे हैं कि यह मत सोचो कि यह परमेश्वर का निर्णय है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह सर्व दयालु है और वह प्रेम का परमेश्वर है, और केवल पुराने नियम का परमेश्वर ही दंड देगा। बकवास। इसलिए अधिकांश ईसाइयों को इज़राइल, गाजा और तूफान कैटरीना के बीच इस संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हे परमेश्वर, अधिकांश लोग ऑस्ट्रेलिया से इज़राइल को नहीं जानते। वे ईश्वर के तोरा के बारे में कुछ भी नहीं जानते और इसलिए वे यह भी नहीं पहचानते कि उन्होंने ईश्वर की अवज्ञा की है या वह अवज्ञा क्या थी। अगर आपके पास इज़राइल के साथ खड़े होने और उन लोगों के खिलाफ खड़े होने का कोई और कारण नहीं है, जिसमें हमारी अपनी सरकार भी शामिल है, जो इज़राइल की जमीन को विभाजित करके अपने दुश्मनों को देना चाहते हैं, तो इसे प्रबुद्ध आत्मसंरक्षण के लिए करें, क्योंकि जब एक राष्ट्र को अनुशासित किया जाता है तो दुष्टों के साथ साथ धर्मी भी प्रभावित होते हैं। इसलिए पद 18 में यहोवा ने गर्मी बढ़ा दी है और उसने कहा कि वह आकाश को लोहे जैसा और धरती को तांबे जैसा बना देगा। इसका मतलब यह है कि आकाश से बारिश नहीं होगी और जमीन सूखी हो जाएगी और झरने बहना बंद हो जाएंगे, नतीजा फसल बर्बाद हो जाएगी। पद 21 में विचार यह है कि पिछले सभी अनुशासनों को अनदेखा कर दिया गया है, इसलिए और भी भयानक और महान दंड श्राप आएंगे। लेकिन इससे भी अधिक हमें अवज्ञा के दूसरे पक्ष की झलक मिलती है, यानी हमारी तरफ से हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और उनकी तरफ से यह उनके दृष्टिकोण से उनके प्रति शत्रुता है। इसलिए बढ़ाती हुई बुरी चीजों की एक पूरी श्रृंखला होगी और स्वाभाविक रूप से इन बुरी चीजों का वर्णन आज्ञाकारिता से वादा किए गए आशीर्वाद के बिल्कुल विपरीत होने के संदर्भ में किया गया है। आज्ञा मानो और जंगली जानवर तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे झुंड और पशुओं को नुकसान पहुंचाने से रोके जाएंगे। आज्ञा मानो और तुम्हारे बच्चे नुकसान से सुरक्षित रहेंगे और तुम्हारे कई बच्चे होंगे। अवज्ञा करो और मैं जंगली जानवरों को तुम्हारे पास भेजूंगा। ये जंगली जानवर तुम्हारे बच्चों को मार देंगे और तुम्हारे परिवार और तुम्हारे झुंड के आकार को कम कर देंगे। यहां मैं भेजूंगा या मैं तुम्हारे ऊपर जंगली जानवरों को छोड़ दूंगा के लिए इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द वे हिशलाचटी है। यह एक बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द निर्माण है और इसका विचार जंगली जानवरों को भगाना है, भगदर मचाना, विद्रोही इजरायली लोगों पर हमला करना है। यह इस बात पर जोर देता है कि यह परमेश्वर द्वारा अपना सुरक्षा हाथ हटाना नहीं है, यह परमेश्वर द्वारा प्राकृतिक घटनाओं को इसराइल को पीड़ित करने की अनुमति देने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के एक अलौकिक कार्य के बारे में है। यहोवा द्वारा इन मांसाहारी जंगली जानवरों के आदिम दिमाग में मनुष्यों पर हमला करने और उन्हें मारने की क्षमता डालने का कार्य, और निश्चित रूप से इसका निहितार्थ यह है कि जंगली जानवरों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। मैं आपको बस यह याद दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर द्वारा दंड देने का सामान्य तरीका प्रकृति की सामान्य और प्रचलित चीजों का उपयोग करना है, लेकिन उन्हें अलौकिक तरीके से उपयोग करना है। जब हम मिस्र पर आए विपत्तियों को याद करते हैं तो वे सभी ऐसी चीजें थीं जो प्रकृति में मौजूद थीं और नियमित रूप से होती थीं। अलौकिक तत्व यह था कि वे मूसा के आदेश पर हुई और वे इस तरह के अतिरंजित और प्रवर्धित तरीके से हुई कि तबाही मच गई। नील नदी में आम तौर पर बहुत सारे मेंढक होते थे, लेकिन इतने नहीं कि वे बड़े मिस्र के शहरों में रेंगने वाले कालीन की तरह बहते हों। मिस्र में बेशक मक्खियां और मच्छर थे, लेकिन इतने नहीं कि वे लोगों और जानवरों को दुख और यहां तक कि मौत की हद तक पीड़ा पहुंचाए। लोगों को समय समय पर त्वचा पर फोरे हो जाते थे, लेकिन हर व्यक्ति को एक ही समय में नहीं और निश्चित रूप से ऐसे फोरे नहीं होते जो उनके सिर से पैर तक पूरे शरीर को ढक लेते हों, और इसी तरह और भी बहुत कुछ। प्रकृति में तूफान सामान्य रूप से आते हैं, लेकिन श्रेणी 5 के तूफान, जिनका आकार मैक्सिको की पूरी खारी के बराबर होता है, जो किसी प्रमुख अमेरिकी शहर को अधिकतम क्षति पहुंचाने तथा तट से तट तक हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा और अनाज आपूर्ति को बाधित करने के उद्देश्य से आते हैं, सामान्य नहीं है। प्रकाशित वाक्य में भी जब यहोवा संसार का न्याय कर रहा है तो वह हमारे विरुद्ध प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करेगा। सूर्य सामान्यतः गर्म और चमकीला होता है, लेकिन उसकी आज्ञा से वह अधिक गर्म और चमकीला हो जाएगा। वैज्ञानिक कुछ समय से इस बात से हैरान हैं कि पिछले कई हजार सालों से पृथ्वी ग्रह उल्काओं और धूमकेतुओं के विनाशकारी टकराव से क्यों बचा हुआ है, जबकि हमारे सौर मंडल में हर दूसरा पिंड नियमित रूप से इनका अनुभव करता है। खैर, निकट भविष्य में वे यह सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि यूहन्ना द रेवेलेटर के अनुसार हम उल्काओं और धूमकेतुओं से टकराएंगे और यह पृथ्वी की आबादी और पारिस्थितिकी को तबाह कर देगा। अच्छाई प्रकाशित वाक्य 6:8 हमें यह भी बताता है कि जंगली जानवर पृथ्वी पर घूमेंगे और लोगों को मारेंगे। और ऐसा कैसे होगा? जब आधुनिक मनुष्य के पास अपनी मर्जी से पूरी प्रजाति को मिटाने के लिए हथियार और अन्य साधन हैं, तो जंगली जानवर कैसे नियंत्रण कर लेते हैं? बाइबल कहती है, ऐसा करने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अधिकार दिया गया था। क्या यह बिल्कुल वैसा नहीं लगता जैसा हम अभी लेव्य व्यवस्था में पढ़ रहे थे कि प्रभु उन लोगों पर विपत्तियां लाते हैं जो उनके विरुद्ध आते हैं, यहां तक कि उनके अपने लोगों पर भी? बेशक ऐसा ही है। मनुष्य के विद्रोह के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया कभी नहीं बदली है, केवल इसके बारे में शिक्षा बदल गई है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई पूछ सकता है, किस तरह का डंबल परमेश्वर को चुनौती देना जारी रखेगा जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ इतनी भयावहता घटित हो रही है? किसी भी देश का कौन सा नेता अपने लोगों को घातक रूप से बीमार होते, व्यापक पैमाने पर भूख से मरते, जंगली जानवरों को अचानक अनियंत्रित रूप से घूमते और मनुष्यों पर हमला करते हुए, मौसम को हिंसक और जानलेवा लैव्य व्यवस्था होते हुए, विदेशी दुश्मनों द्वारा लगातार उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हुए, बच्चों को मरते हुए और सामान्य ज्ञान को अतीत की बात बनते हुए देखेगा और फिर भी वही काम करता रहेगा जो यहोवा के कठोर न्याय को उनके और उनके लोगों पर बरसा रहा है? क्या इनमें से कुछ भी परिचित लगता है या हाल ही का? खैर, मनुष्य जो है वह जल्दी भूल जाता है और आसानी से नहीं सीखता। इसलिए पद 23 में परमेश्वर कहता है कि इस अकल्पनीय विनाश के बावजूद जो उन्होंने अनुभव किया है, यदि उसके लोग फिर भी उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, तब जब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। और वह कहता है कि वह वाचा के लिए प्रतिशोध लेगा या ऐसी ही कोई बात। इब्रानी वाक्यांश है नो केमेट नेकम बेरेट। बेशक बेरेट का मतलब है वाचा। वाचा का प्रतिशोध निष्पादित करें या कुछ और, इस बहुत ही अनोखे वाक्यांश का अर्थ यह है कि इन सभी दंडों का कारण और उद्देश्य वाचा में लिखे गए उन वादों को पूरा करना है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति के हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि वाचा ने इन श्रापों का वादा किया है कि अगर इसराइल यहोवा की अवज्ञा करता है तो ये चीजें की जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है और परमेश्वर कभी भी अपने वादों से पीछे नहीं हटता है। इसके अलावा इन बुरी चीजों का परिणाम जो उसके अवज्ञाकारी लोगों पर उचित रूप से आ रहा है, वह यह है कि वाचा के अंतिम दिव्य लक्ष्य भी पूरे होंगे। एक छोटा सा उदाहरण, यहोवा के लोग उसके विरुद्ध विद्रोह के कारण बिखरे और तितर बितर हो गए। जब नियत समय पर प्रभु ने उनकी वापसी के लिए पवित्र भूमि तैयार कर ली, तो ऐसा लगा कि दुनिया की यहूदी आबादी का बड़ा हिस्सा घर वापस नहीं जाना चाहता था। वे जहां थे वहां सहज थे। फिर भी यहोवा ने जो वादे किए उनमें से एक यह था कि राष्ट्रों में बिखराव के दौरान उसके लोगों को केवल इब्रानी होने के कारण सताया और मार डाला जाएगा। यह जर्मनी में यहूदियों के विरुद्ध इतिहास का सबसे बड़ा उत्पीड़न और नरसंहार था, वह घटना जिसे हम प्रलय कहते हैं, जिसके कारण यहूदी अपने वतन लौट आए और 1948 में इसराइल राष्ट्र का पुनर्जन्म हुआ। यहूदियों की हठधर्मिता के कारण वाचा का एक नकारात्मक पहलू सामने आया, लेकिन इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि वाचा का एक सकारात्मक पहलू फिर भी सामने आया। लैव्य व्यवस्था 26:25 के शब्दों के पीछे यही धारणा है। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है कि हमें आगे बताया गया है कि सुरक्षा के लिए शहरों में जाने से उन लोगों की मदद नहीं होगी जो परमेश्वर ईश्वर के खिलाफ जाते हैं। बेशक उस युग की वास्तविकताओं में यह लिखा गया था, यह इस तथ्य का जिक्र कर रहा है कि आम तौर पर छोटे असुरक्षित गांवों से घिरा एक दीवार वाला शहर था। भले ही इन दीवार वाले शहरों में बहुत से लोग रहते थे, लेकिन अधिकांश आबादी हजारों बाहरी गांवों में रहती थी। ब्लू कॉलर लेबर और फील्ड वर्कर गांवों में रहते थे, जबकि नेता, शिक्षक, व्यापारी और सरकारी अधिकारी दीवार वाले शहरों के अंदर रहते थे। जब कोई हमला आसन्न होता था तो गांवों के लोग तुरंत सुरक्षा के लिए दीवार वाले शहरों में भाग जाते थे। यह सभी को समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था थी।
क्या यह दिलचस्प नहीं है कि आज के समय में हमारे अमेरिकी शहर अपने सभी स्तरों की सरकारी और पुलिस सुरक्षा और निजी सुरक्षा के साथ हमारे आतंकवादी दुश्मनों का मुख्य लक्ष्य बन गए हैं? और यह कि एक सदी तक खेतों से निकलकर अमेरिका के शहरों में अधिक सुरक्षित और पूर्वानुमानित जीवन की तलाश में आने के बाद कई शहरवासी अब इस खतरे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पद 26 अकाल की बात करता है। जैसे पद 4 में परमेश्वर का पहला और सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में भोजन था, एक उन्नत और बहुत गंभीर अभिशाप भोजन की कमी है। 10 महिलाओं द्वारा एक ही ओवन में रोटी पकाने और वजन के हिसाब से रोटी बांटने का यह विचार गंभीर खाद्यान्न की कमी और जो थोड़ा बहुत है उसके राशनिंग की बात करता है। अभी भी यह ना पहचानने के कारण कि जो कुछ हो रहा है वह यहोवा के लोगों की उसके प्रति शत्रुता के कारण उसका न्याय है, इससे भी बदतर परिणामों की ओर एक और संक्रमण में हमें पद 29 में बताया गया है कि लोग भूख से इतने हताश हो जाएंगे कि वे सचमुच अपने ही बेटों और बेटियों को खा जाएंगे। क्या वे लोग जो सदियों से उन जानवरों का खून सावधानी से निकालते आए हैं जिन्हें वे खाना चाहते हैं और उससे पहले केवल वही मांस खाते थे जो जंगल के तंबू की कांस्य वेदी पर चढ़ाया गया था, क्या वे लोग वास्तव में किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को बचाने के लिए मानव मांस खाने की ओर रुख करेंगे? हां, वे ऐसा करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। और बाइबल में दर्ज है कि ऐसा कब हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम की लंबी घेराबंदी के दौरान बाइबल विलाप में बताती है कि इब्रानी महिलाओं ने पवित्र शहर की दीवारों के अंदर भूख से मरते हुए अपने बच्चों को मार डाला, पकाया और खाया। और ऐसा करने वाले वे अकेले लोग नहीं हैं। समझें कि लैव्य व्यवस्था 26 का यह भाग सबसे निम्नतम, सबसे बुरे से भी बुरे की बात कर रहा है।
मृत्यु सबसे बुरी चीज नहीं है जो किसी व्यक्ति के साथ घट सकती है। खुद को जीवित रखने के लिए अपने ही बच्चों का मांस खाना सबसे बुरी चीज है। लेकिन ध्यान दें कि इस घृणित, वास्तव में अकल्पनीय जगह के साथ साथ क्या होता है, जहां मानव जाति, इस मामले में इज़राइल, डूब गई है बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा। पद 30 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊंचे स्थानों, तुम्हारी पूजा की वेदियों को काट डालूंगा और फिर तुम मारे जाओगे और तुम्हारे निर्जीव शरीरों को उन निर्जीव मूर्तियों पर रख दिया जाएगा जिनके सामने तुम झुकना पसंद करते हो। आइए इसे थोड़ा जांचें। यहां जो नष्ट किया जा रहा है वह इब्रानी में बामाह है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका आम तौर पर ऊंचे स्थान के रूप में अनुवाद किया जाता है, और जहां तक यह जाता है यह सही है, जब तक हम समझते हैं कि एक ऊंचा स्थान एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ अंततः बलिदान की वेदी या एक ऐसा स्थान है जहां किसी देवता की पूजा होती है। समझें कि यह हमेशा बलिदान की एक मूर्ति पूजक वेदी या पूजा के स्थान की बात कर रहा है। यह पुराने नियम की बात की पुस्तकों में इज़राइल के परमेश्वर के लिए बलिदान की वेदियों की बात कर सकता है, लेकिन आम तौर पर ये अनधिकृत वेदियों थीं जिन्हें उच्च स्थान बामाह कहा जाता था। ये वे ऊंचे स्थान हैं जिन्हें इब्रानियों को नहीं बनाना चाहिए था, इसलिए उन्हें सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता है। भाषा के विज्ञान के कारण अब हम जानते हैं कि इब्रानी शब्द बामाह उग्रिटिक शब्द बेमत से आया है, और बेमत का अर्थ है पीठ, घोड़े की पीठ की तरह। यह एक ऐसी जगह है जिस पर बोझ लादा जाता है, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जो बोझ ढोने वाले जानवर की शारीरिक रचना में सबसे ऊपर होती है। इसीलिए बाइबल कभी कभी पहाड़ की पीठ या पहाड़ी के कंधे का उल्लेख करेगी, और इस तरह के संदर्भ का मतलब एक ऊंची, छोटी या भूभाग का ऊपरी हिस्सा होता है। अतः इब्रानी शब्द बामाह अपने साथ ये सभी संदर्भ लेकर चलता है। इन मूर्ति पूजक ऊंचे स्थानों पर इस्तेमाल की जाने वाली धूप वेदियां भी नष्ट कर दी जाएंगी। यहां इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द चम्मानिम है, और कभी कभी इसका अनुवाद, जैसा कि संपूर्ण यहूदी बाइबल में है, सूर्य की पूजा के लिए खंभे या सूर्य की पूजा से संबंधित कुछ ऐसी चीज के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह बहुत प्रचलित है। यह निश्चित है कि चम्मानिम का शाब्दिक अर्थ सूर्य की पूजा नहीं है, लेकिन यह झूठे देवताओं के लिए जलाई जाने वाली धूप को दर्शाता है।
अंत में हम पाते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारी लाशें तुम्हारी बेजान मूर्तियों पर फेंक दी जाएंगी। दरअसल इब्रानी शब्द गिलुलिम, जिसका अनुवाद आमतौर पर मूर्तियों के रूप में किया जाता है, का शाब्दिक अर्थ फेटिश है। इसका मतलब है कि इसे अधिक सही ढंग से शब्दबद्ध किया जाना चाहिए, फेटिश। तो फेटिश क्या है? फेटिश कोई भी वस्तु है जिसके बारे में माना तुम्हारी लाशें तुम्हारे बेजान शरीरों पर फेंक दी जाएंगी चाहता है कि उसमें जादुई शक्ति है। यह ऐसी चीज भी है जिसके प्रति कोई असामान्य रूप से समर्पित है, या ऐसी चीज जो किसी में कामुक भावनाएं जगाती है, लेकिन उस चीज के बारे में स्वाभाविक रूप से कामुकता नहीं होती है। हम सभी ने सुना है ऐसे लोग जिन्हें पैरों का शौक है या दस्ताने का शौक है इत्यादि। तो यहां जिस बारे में बात की जा रही है वह उससे कहीं परे है, जिसे हम आमतौर पर परमेश्वर की लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की छोटी मूर्ति के रूप में सोचते हैं। बल्कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में उन चीजों के बारे में बात कर रहा है जो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें जो असामान्य रूप से उन्हें जकड़ लेती हैं और वे लोग किसी भी कीमत पर उन्हें जाने नहीं देते। तो इस आयत में विचार यह है कि उसके लोगों को मार दिया जाएगा और उनके शरीर तब भी गिरेंगे जब वे बेकार बेजान बेकार चीजों पर मौत की पकड़ में होंगे, जो उनके लिए जीवन से भी ज्यादा मायने रखती हैं, या बेहतर इज़राइल के परमेश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे चीजें जिन पर वे सुरक्षा के लिए भरोसा करते थे या जो उन्हें अच्छा महसूस कराती थी, ये चीजें जिन्हें उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा में महिमा मंडित किया है, वे चीजें जिन्हें उन्होंने पवित्र घोषित किया है लेकिन परमेश्वर ने नहीं, वे चीजें जिन्हें उन्होंने अच्छा घोषित किया है लेकिन परमेश्वर ने बुरा घोषित किया है। मेरी बात सुनो, ये मेरा रूपक या किसी प्राचीन बाइबल की आयत को तौर मरोर कर पेश करना नहीं है। उस समय इसका यही मतलब था और आज भी इसका यही मतलब है। ओह, लेकिन यहोवा ने अभी भी अपने कानून के खिलाफ अवज्ञा के लिए श्राप देना बंद नहीं किया है। आगे यह कहता है कि वह अपने लोगों के शहरों और उनके पूजा स्थलों को नष्ट कर देगा, जिसका अर्थ है कि वे स्थान जिन्हें उन्होंने वास्तव में उसकी पूजा करने के लिए अलग रखा था, लेकिन अंदाजा लगाइए उसे उन स्थानों से कोई सम्मान नहीं मिलता। परमेश्वर कहता है कि वह उनकी सुगंधित सुगंध का आनंद नहीं लेगा। नहीं, वह इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि इसराइलियों की गंध कितनी अच्छी है, वह उनके होम बलि के बारे में बात कर रहा है। याद कीजिए कि कैसे हमने लेव्य व्यवस्था के शुरुआती अध्यायों में यहोवा के बारे में लगातार उल्लेख के बारे में विस्तार से बात की थी कि वह होम बलि के धुएं को सूंघता था और इसे एक सुखद और मनभावन सुगंध के रूप में मानता था। यहां विचार यह है कि जिस मंदिर में बलि दी जाती है उसे नष्ट कर दिया जाएगा, और भले ही इसराइल मंदिर के खंडहरों या कहीं और से बलि चढ़ाना चाहे, प्रभु उनके होम बलि को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनके पाप की स्थिति बहुत बड़ी है। ओह, दूसरे शब्दों में पशुओं के रक्त की बलिदान प्रणाली, जिस पर इब्रानियों ने प्रायश्चित के लिए भरोसा किया था, परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं होगी क्योंकि लोग हृदय और कर्म से बहुत अशुद्ध हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कभी भी किसी को यह मत कहने दीजिए कि तोरह की बलिदान प्रणाली यांत्रिक, कानूनी और बेकार थी। यह परमेश्वर द्वारा इज़राइल के लाभ के लिए निर्धारित की गई थी और इसने ठीक वही किया जो परमेश्वर ने इसे करने के लिए निर्धारित किया था। यह केवल तभी बेकार हो गया जब वे अविश्वासी हो गए, जब इज़राइलियों ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और बलिदान प्रणाली को जादू की तरह या अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो यह वास्तव में बेकार थी। बलिदान प्रणाली में हमेशा इसराइल के परमेश्वर के प्रति निष्ठा और उन लोगों द्वारा विश्वास से भरा हृदय अपेक्षित था जो उस पर भरोसा करते थे। यह यीशु हामाशियाज के साथ
बिल्कुल अलग नहीं है। उनका बलिदान केवल उन लोगों के लिए प्रभावशाली है जो उन पर विश्वास करते हैं। अब उनके बलिदान ने जो हासिल किया वह बलिदान प्रणाली की तुलना में कुछ अलग और उच्च स्तर पर था, लेकिन यह एक और पाठ के लिए एक और मामला है।
कृपया लैव्य व्यवस्था 26 के इन पदों के बीच सटीक समानता देखें, जहां परमेश्वर कह रहा है कि वह उनके बलिदानों को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वे उनके नाम पर, उनके मंदिर में, यहां तक कि सामान्य रूप से यहोवा ने इसराइलियों को ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि उनके हृदय सही नहीं है। इसके विपरीत यीशु ने उन लोगों के बारे में क्या कहा जो मसीह के नाम पर परमेश्वर को अपने स्वयं के बलिदान चढ़ाएंगे लेकिन वे भी स्वीकार्य नहीं होंगे। मत्ती 7:22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 23, और तब मैं उनसे कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे अधर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
लैव्य व्यवस्था 26 के शब्द मत्ती 7 में यीशु के शब्दों के संदर्भ हैं, और जैसा कि प्रकाशित वाक्य प्रकट करता है, अंत के समय में हमारे चर्च की इमारतें ऐसे लोगों से भरी होंगी जो हर रविवार को आते हैं, गायक मंडली में गाते हैं, डीकन और एल्डर के रूप में सेवा करते हैं, ईमानदारी से दशमांश देते हैं, बुधवार की शाम की सेवा को नहीं छोड़ते हैं और सभी सही बातें जानते हैं। फिर भी क्योंकि ये लोग संभवतः बहुत अच्छे लोग सिर्फ औपचारिकताएं निभाते थे और ईसाई परंपराओं का आनंद लेते थे, लेकिन उनके दिल पवित्र आत्मा से भरे नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी यीशु पर अपना भरोसा नहीं रखा। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उन्हें यीशु ने उनसे दूर जाने के लिए कहा, डरावना डरावना डरावना। और वैसे यीशु ने उन लोगों के समूह की पहचान करने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें वह स्वीकार नहीं करेगा? उसने कहा, तुम जो अधर्म का अभ्यास करते हो, तुम में से जो लोग बाइबल में कहते हैं अधर्म का अभ्यास करो, बस अभी उस शब्द को काट दो क्योंकि यह गलत है और यह तुम्हें आप जो बेकार की राह पर ले जाता है। ग्रीक शब्द एनीमिया है। मैं आपको उस शब्द का अर्थ बताने के लिए कुछ मानक अनुक्रमणिकाएं उद्धृत करता हूं।
458 अवनोमी, एक विसंगति, एक आदमी, ए आह।
अर्थ एक, कानून के बिना की स्थिति एक कम, कानून से अनभिज्ञ होने के कारण एक खा, कानून का उल्लंघन करने के कारण दो, कानून की अवमानना और उल्लंघन। यीशु आम अपराधियों के बारे में बात नहीं कर रहे थे। यह उनके दिनों में रोमन कानून व्यवस्था या यहां तक कि अब अमेरिकी कानून व्यवस्था को तोड़ने के बारे में नहीं है। किसी भी यहूदी के लिए केवल एक ही कानून था। जब यीशु ने कानून का उल्लेख किया तो इसका हमेशा एक ही मतलब था, मूसा के कानून।
ये लोग ऐसा क्या कर रहे थे जिसके बारे में यीशु ने कहा कि यह अधर्म है? वे यीशु के नाम पर भविष्यवाणी कर रहे थे और हमारे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। यही उनका अपराध था। यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकालना निश्चित रूप से किसी रोमन कानून के विरुद्ध नहीं था। नहीं, मुद्दा यह है कि ये लोग जो हमारे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और यीशु के नाम पर भविष्यवाणी कर रहे थे, वे ऐसा बिना विश्वास के और बिना तोरह व्यवस्था को अपने दिलों पर लिखे हुए कर रहे थे। यह अधर्म है।
तो जैसे बलिदान की व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए नहीं थी बल्कि सिर्फ इसराइलियों के लिए थी, वैसे ही मसीह का बलिदान पूरी दुनिया के लिए नहीं था बल्कि दुनिया के सिर्फ उस हिस्से के लिए था जो उस पर भरोसा करेगा। मैं प्रचारकों और पादरियों को राजनीतिक रूप से सही चिल्लाते हुए सुनकर दुखी हूं, मसीह पूरी दुनिया के लिए मरा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वह उन लोगों के लिए मरा जिन्होंने दुनिया से ज्यादा मसीह को तरजीह दी। नतीजतन अब हमारे पास समलैंगिक पादरी चर्च हैं जो मसीह के बारे में बाइबल की एक भी बात पर विश्वास नहीं करते, और हमारे पास यह सिद्धांत है कि एक दयालु ईश्वर कभी किसी को भी नरक में नहीं भेजेगा।
यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
और दुख की बात है कि ये केवल कुछ ही लोग हैं। एक अवशेष उन अरबों लोगों की तुलना में जो इस ग्रह पर आए और चले गए।
हम अगली बार लैव्य व्यवस्था 26 को खत्म करेंगे।